मुख्य समाचारों में स्टेट और फेडरल के बीच फंड्स को लेकर वाद विवाद के बीच न्यू साउथ वेल्स के शहरों में बारिश जारी। बड़े पैमाने पर नागरिकों की मौत पर जेलेंस्की ने सीधे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से की अपील और सिडनी ओपरा हाउस ने जीता दुनिया का सर्वोच्च इंजीनियरिंग पुरस्कार। नमस्कार, लीजिए प्रस्तुत हैं समाचार विस्तार में अनीता बरार के साथ। प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने न्यू साउथ वेल्स और क्वींसलैंड की अत्यधिक बाढ़ के लिए फेडरल सरकार की प्रतिक्रिया का बचाव किया है। प्रधानमंत्री ने प्राकृतिक आपदाओं के राजनीतिकरण पर अपनी निराशा व्यक्त करते हुए इस विचार का खंडन किया कि उनकी सरकार को चुनाव के इतने गरीब होने के कारण क्वींसलैंड को अधिक समर्थन देना चाहिए था। श्री मॉरिसन का कहना है कि उन्होंने न्यू साउथ वेल्स में पहले से ही वितरित किए गए $1 बिलियन के साथ $2.1 बिलियन की बाढ़ राहत देने के लिए प्रतिबद्ध किया है और क्वींसलैंड में $370 मिलियन की प्रतिबद्धता है। उन्होंने कहा कि वो उन राज्य सरकारों की आलोचना नहीं समझ पा रहे जिन्होंने कॉमनवेल्थ फंडिंग से मैच नहीं किया था।
On supporting flood victims, then I think they can be critical. But when they still have not yet got even the money out the door, when we've got $1 billion here in New South Wales, I think that speaks for itself. We've already turned up, and we'll keep turning up with the things that we're responsible for, and state governments will get on with the things they're responsible for. The requests they've made under these programs go outside of the scope of what the normal arrangements are for flood responses. And so that's where state governments have to step up.
इस बीच फेडरल विपक्ष के नेता एंथनी एल्बनीज़ी ने कोलिशन की इस आलोचना को रद्द किया है कि लेबर की 2.5 बिलियन वृद्ध देखभाल योजना आर्थिक रूप से अक्षम्य है। सरकार के मौजूदा $1 ट्रिलियन के कर्ज की ओर इशारा करते हुए उनका कहना है कि ये लिबरल्स और नेशनल्स हैं जिन्हें खर्च करने में समस्या है।
The truth is, We have been considered and measured. I think if you're concerned about those promises, you'll be beside yourself when a Liberal minister comes here. They spent $70 billion in between my EFO in December and the budget last Tuesday. $70 billion without any offsets.
श्री अल्बनीज़ी का कहना है कि फेडरल सरकार ऑस्ट्रेलिया की आर्थिक सुधार से निपटने के बजाय राजनीति खेलने पर केंद्रित है। सेनेट के भ्रम और शालीनता अनुमानों की सुनवाई के अनुसार 2.1 मिलियन से अधिक ऑस्ट्रेलियन अपने COVID-19 बूस्टर शॉट के लिए ओवरड्यू हैं। फेडरल वैक्सीन रोल आउट के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल फ्रीबेन का कहना है कि लगभग 11% पात्र आबादी को अपना तीसरा डोज लेना बाकी है। उन्होंने कहा कि बूस्टर शॉट्स की सबसे धीमी गति 40 वर्ष से कम आयु के लोगों में है।
People are no longer as fearful of Omicron as they were with previous variants. People have had it and have moved on and thought, no big deal, why bother getting a booster? Some people are still confused about whether they, when they get it, if they've had COVID.
New South Wales तट के निवासियों को भारी बारिश और अचानक बाढ़ के लिए तैयार होने की चेतावनी दी जा रही है। इस क्षेत्र में एक और बाढ़ आ चुकी है। राज्य में पिछले कुछ महीनों से बार बार बारिश हो रही है। मौसम विज्ञान ब्यूरो से सारा स्कली का कहना है कि मध्य और दक्षिण न्यू साउथ वेल्स के तट कल गुरुवार से भारी बारिश बढ़ने की उम्मीद कर सकते हैं। गॉसवर्ड से बीगा के दक्षिण तक और अंतर्देशीय मध्य और दक्षिणी टेबल लैंड में अचानक बाढ़, भूस्खलन और तेज आंधी की चेतावनी है। व्हाइट हाउस के अनुसार यूक्रेन में युद्ध अपराधों के नए सबूत सामने आने के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका और पश्चिमी सहयोगी रूस पर तत्काल अतिरिक्त प्रतिबंध लगाने की योजना बना रहे हैं। नए दंड में रूस में सभी नए निवेश पर प्रतिबंध, इसके वित्तीय संस्थानों और राज्य के स्वामित्व वाले उद्यमों पर अधिक प्रतिबंध शामिल होंगे। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव जेन साकी का कहना है कि सरकारी अधिकारियों और उनके परिवार के सदस्यों पर और भी प्रतिबंध लगाए जाएंगे।
The goal is to force them to make a choice. So Russia does not have unlimited resources, especially now, given the crippling sanctions we've put in place. And they are going to be forced to choose between draining remaining valuable dollar reserves or new revenue coming in or default.
सुश्री साकी ने कहा कि प्रतिबंधों का उद्देश्य रूस के आर्थिक, वित्तीय और तकनीकी अलगाव को दुनिया के बाकी हिस्सों से आगे बढ़ाना है, जिससे रूस यूक्रेन में लड़ाई जारी रखने के लिए आवश्यक संसाधनों और उपकरणों से कट जाए। इस बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद या तो एक हमलावर करार करते हुए रूस को हटा दे या खुद को पूरी तरह से भंग कर दे। श्री ज़ेलेंस्की ने सामूहिक कब्रों में फेंके गए शवों की छवियों और वीडियो का एक ग्राफिक खाता विस्तृत किया, जिसमें अंगों के टुकड़े, गला काटने और बच्चों के सामने महिला के साथ बलात्कार के उदाहरण थे। उन्होंने रूसी सैनिकों पर अपनी खुशी के लिए नागरिकों को मारने का आरोप लगाया। रूसी अधिकारियों ने दावों और छवियों को मंचित बताते हुए खारिज किया है, लेकिन यूक्रेनी राष्ट्रपति का कहना है कि उनके पास निर्णायक सबूत हैं।
There are satellite images. We can conduct full and transparent investigations. That is what we are interested in. Maximum access for journalists, maximum cooperation with international institutions, involvement of the International Criminal Court. We want complete truth and full accountability. I'm sure that every member state of the UN is interested in this. In order to punish once and for all those who consider themselves privileged and believe that they can get away with anything, so that all the other war criminals in the world know how they will be punished.
सिडनी ओपरा हाउस को अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियरिंग से दुनिया का सर्वोच्च इंजीनियरिंग पुरस्कार मिला है और इस तरह ये एफिल टावर, मचू पिचू और गोल्डन गेट ब्रिज जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्थलों में शामिल हो गया है। यूएस में प्रशासित विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हिस्टोरिक लैंडमार्क कार्यक्रम में शामिल होने के साथ साथ ओपरा हाउस को इंजीनियरिंग ऑस्ट्रेलिया से सिडनी हार्बर ब्रिज और फर्फी वाटर कार्ट जैसे देश के अन्य संरचनात्मक आइकन की तरह एक इंजीनियरिंग विरासत अंतर्राष्ट्रीय मार्कर भी मिला है। और भारत में भारतीय जनता पार्टी आज मना रही है अपना 42वां स्थापना दिवस। ये पार्टी 6 अप्रैल 1980 को अस्तित्व में आई थी और इस समय देश की सबसे बड़ी पार्टी बनी है। 6 अप्रैल से 14 अप्रैल तक अपना स्थापना दिवस मनाते हुए पार्टी टीकाकरण दिवस, गरीब कल्याण अन्न योजना और 14 अप्रैल को अंबेडकर जयंती भी मनाएगी। और अब बात ऑस्ट्रेलियन डॉलर की। ऑस्ट्रेलिया का एक डॉलर अमेरिका के लगभग 76 सेंट और भारत के 57 रुपये 28 पैसे के बराबर है। खेल समाचारों में एमली वेट्स ने AFL विमेन का बेस्ट एंड फेयरेस्ट अवार्ड जीता है। ब्रिस्बेन लायंस की उपकप्तान ने एनी हैचेट को हराकर रोमांचक 1 वोट से ये जीत हासिल की। बेट्स ने क्वींसलैंड बाढ़ के दौरान अपने साथियों के समर्थन की सराहना की।
One of our key values at the Lions is sisterhood, and that was, you know, the girls were straight away there to obviously clean up the house and do what they could for our home, which obviously was, ruined by the floods. So, yeah, sisterhood is definitely what it feels like at the Lions. I love these girls like sisters, and that's what has driven our success. Really, is that love for each other and care.
और मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार कल यानी बृहस्पतिवार को पर्थ में धूप रहेगी। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम 18 डिग्री। एडिलेड में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। मेलबर्न में आंशिक रूप से बादल, अधिकतम तापमान 24 डिग्री, न्यूनतम 13 डिग्री। होबार्ट में मुख्यतः धूप रहेगी, अधिकतम तापमान 20 डिग्री, न्यूनतम 8 डिग्री। कैनबरा में बारिश, अधिकतम तापमान 17 डिग्री, न्यूनतम 12 डिग्री। सिडनी में बारिश, अधिकतम तापमान 22 डिग्री, न्यूनतम 17 डिग्री। ब्रिस्बेन में बौछारें बढ़ेंगी, अधिकतम तापमान 28 डिग्री, न्यूनतम 20 डिग्री। और डार्विन में आंशिक रूप से बादल रहेंगे, अधिकतम तापमान 34 डिग्री, न्यूनतम 28 डिग्री सेल्सियस। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। SBS रेडियो से डाउनलोड करने के लिए आपका धन्यवाद।
हमारा पूरा कार्यक्रम आप कैसे सुने इसके लिए sbs.com.au/hindi पर जाएं।